ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षकों को मर्यादा क्रम सूची में शामिल करने का मंत्री परिषद बैठक का निर्णय। नारायणी अस्पताल वीरगंज के आकस्मिक कक्ष भवन निर्माण में 1,84,00,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ठाकुर सहित 9 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में मामला दर्ज। निर्माण के लिए कल से 10 दिनों तक रात में बंद रहेगी 9वीं से नागढ़ूंगा सड़क। और आतंकवाद विरोधी 2 अलग अलग जांचों में ब्रिटिश पुलिस द्वारा 7 ईरानी नागरिकों सहित 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने शिक्षकों को मर्यादा क्रम सूची में समावेश करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद के वैशाख 15 और 17 के निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि सरकार ने शिक्षकों को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षकों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण उन्हें अपमानित महसूस होता था। यह निर्णय शिक्षक महासंघ द्वारा काठमांडू में किए गए आंदोलन के दौरान सरकार के साथ हुई सहमति के अनुसार लिया गया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने जनकपुर सिगरेट कारखाना, गोरखा काली रबर उद्योग, उदयपुर सीमेंट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कंपनी लिमिटेड, हेटौरा सीमेंट उद्योग, बुटवल धागा कारखाना लिमिटेड और नेपाल ओरिएंट मैग्नीशाइड कंपनी सहित 7 सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन की जिम्मेदारी अर्थ मंत्रालय को सौंपने की स्वीकृति दी है। बैठक में नेपाल स्मार्ट सिटी से संबंधित संकेतों को मंजूरी दी गई। इसी तरह नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर पद के लिए सिफारिश समिति में पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल कर समिति का पुनर्गठन करने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय और इसके अधीन स्थल निकायों के संगठनात्मक ढांचे का सर्वेक्षण करने की पूर्व स्वीकृति प्रदान करने, वन तथा वातावरण मंत्रालय के अंतर्गत सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र वन संरक्षकों को वर्दी उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने, नेपाल हज समिति गठन तथा संचालन आदेश 2081 को मंजूरी देने, स्वास्थ्य बीमा पहला संशोधन नियमावली को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय बैठक ने किया है। राष्ट्रीय सभा ने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 स्वीकृत किया है। सभा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 के प्रस्ताव को सभा ने स्वीकृत किया। इसी तरह कुछ नेपाल आयन संशोधन करने वाला विधेयक 2080 और भंसार विधेयक 2080 को सभा समक्ष टेबल किया गया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। काठमांडू के आगमन के प्रमुख मार्ग 9वीं से नागढ़ूंगा सड़क को वैशाख 22 से वैशाख 31 तक रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस अवधि में सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। काठमांडू से 9वीं से जाने वाले हल्के और भारी वाहनों को नागढ़ूंगा चौकी पर रोका जाएगा। 9वीं से काठमांडू आने वाले वाहनों को खत्री पौवा पुल पर रोक लगेगी। नागढ़ूंगा मोगलिंग सड़क परियोजना कार्यालय ने इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। ये व्यवस्था सड़क विस्तार और मरम्मत कार्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। नेकपा एमाले की आज हुई सचिवालय बैठक ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान सरकार बनने के बाद देश को राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता मिली है। बैठक में ये भी निष्कर्ष निकाला गया कि राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश करने वाले पक्ष असफल हो रहे हैं और देश राजनीतिक स्थिरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये जानकारी पार्टी के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली ने दी। बैठक में सरकार द्वारा संघीय संसद में पेश किए गए आगामी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। बैठक में नेताओं ने रणनीतिक महत्व की योजनाओं को प्राथमिकता देने, बजट क्रियान्वयन को परिणाम उन्मुख बनाने और सूचना प्रविधि को विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। साथ ही बैठक में आंदोलनरत शिक्षकों और चिकित्सकों के साथ सहमति बनाकर सकारात्मक संदेश देने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया गया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नारायणी अस्पताल वीरगंज के आपातकालीन वार्ड भवन निर्माण में 1,84,00,000 रूपये से अधिक की सार्वजनिक धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ठाकुर सहित 9 लोगों के खिलाफ आज विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। आयोग ने आरोप लगाया है कि अस्पताल भवन निर्माण के दौरान सार्वजनिक खरीद आयन का उल्लंघन करते हुए घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मामले में आरोपितों में नारायणी अस्पताल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट ठाकुर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय परसा के कार्यालय प्रमुख राजेंद्र शाह, इंजीनियर मोहम्मद सकूर अंसारी, अस्पताल के पूर्व लेखापाल सुदीप कुमार माझी, सुशील प्रसाद यादव, मूल्यांकन समिति के संयोजक डॉ वीरेंद्र बहादुर प्रधान और सदस्य सचिव माधवी चौधरी शामिल है। इसके अलावा निर्माण कंपनी नवासन कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक जगत घिमिरे और लुम्बिनी मिशन जेवी के प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद शर्मा पर भी झूठे तकनीकी विवरण पेश करके ठेकेदारी समझौते के माध्यम से सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। जिला अस्पताल धनकुटा में अपनी स्थापना के 111 वर्ष बाद हेमोडायलिसिस सेवा औपचारिक रूप से शुरू की गई है। इस सेवा के तहत प्रति सप्ताह 12 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। दो पालियों में सेवा संचालित होने से प्रतिदिन 24 रोगियों तक को लाभ मिल सकेगा। ये जानकारी अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ संतोष राय ने दी। सेवा के शुरू होने से कोशी पहाड़ी क्षेत्र धनकुटा, तिरथुम और भोजपुर के मरीजों को अब तराई के महंगे अस्पतालों में डायलिसिस के लिए जाने की मजबूरी खत्म होगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन मानव जीवन के लिए अपरिहार्य विषय है। लमजुंग के बाहुन डाड़ा स्थित पुस्तून में आयोजित राष्ट्रकवि माधव घिमिरे की पूर्ण कद प्रतिमा के शालिक अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास करना सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि प्रतिभाशाली रचनाकारों और साहित्यकारों को समाज और सरकार द्वारा समर्थन, सहयोग और सम्मान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रकवि घिमिरे ने न केवल भाषा और साहित्य बल्कि समग्र साहित्यिक क्षेत्र को समृद्ध बनाने और हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया है। सरकार ने कुछ दिनों में ही कृषि आयन लाने की तैयारी की है। प्रतिनिधि सभा की कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा तैयार किया गया कृषि आयन वर्तमान में कानून मंत्रालय में सुझाव प्रक्रिया में है और वहां से आने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। मंत्री अधिकारी ने कहा कि कृषि आयन लागू होने के बाद देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पड़ोसी देशों चीन, भारत और बांग्लादेश सहित अन्य देशों में कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तलाश कर रही है। मंत्री अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना की 10 वर्षीय अवधि समाप्त होने के बाद इस परियोजना को राष्ट्रीय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। सांसदों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकांश युवा विदेश जाने को तैयार हैं लेकिन कृषि में श्रम करना नहीं चाहते। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को युवाओं को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में लाने चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि कृषि सभी क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए मंत्रालय को सिंचाई, वन तथा पर्यावरण, भूमि, संचार और अर्थ जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग रौतहड़ के चंद्र निगाहपुर में आज कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार रौतहड़ की गरुणा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 मलाही टोल के 60 वर्षीय बलिराम सहनी और उनकी बेटी 40 वर्षीय उर्मिला देवी सहनी की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटिश पुलिस ने आतंकवाद विरोधी दो अलग अलग जांचों में 7 ईरानी नागरिकों सहित कुल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई यूनाइटेड किंगडम में संभावित आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। गिरफ्तारियां दो स्वतंत्र आतंकवाद रोधी जांचों के तहत की गई जो संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से संबंधित थी। सभी 8 आरोपियों में से 7 ईरानी मूल के नागरिक हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की राष्ट्रीयता अभी स्पष्ट नहीं की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारियां लंदन और उसके आसपास के इलाकों में की गई, जहां पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। यूके में हाल के वर्षों में ईरान से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों की गई रिपोर्ट सामने आई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षकों को मर्यादा क्रम सूची में शामिल करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। नारायणी अस्पताल वीरगंज के आकस्मिक कक्ष भवन निर्माण में 1,84,00,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ठाकुर सहित 9 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में मामला दर्ज। निर्माण के लिए कल से 10 दिन तक रात में बंद रहेगी नौवीं से नागढ़ा सड़क। और आतंकवाद विरोधी दो अलग अलग जांचों में ब्रिटिश पुलिस द्वारा 7 ईरानी नागरिकों सहित 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।